Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
है कि नहीं भाई, घटाकाश को उठा कर ले सकते हैं क्या आप? क्यों नहीं ले सकते? व्यापक है ना, और व्यापक का मतलब यह है कि जहां जाएंगे वहां पर पहले ही मौजूद है वो, हो गया ना। इसलिए कर्मेंद्रिय का विषय वो आत्मा नहीं बन सकती है ना। इस सभी का साक्षी है, सभी का अधिष्ठान है, इसमें सब तात्पर्य है। अच्छा, अलक्षणम, अलक्षणम कह दिया, अनुमान का विषय नहीं बनेगा वो, हो गया ना। देखो, अनुमान दो प्रकार का होता है, एक स्वतंत्र अनुमान और ये श्रुतिमूलक अनुमान। समझ में ना भैया, क्या एक स्वतंत्र अनुमान होता है और एक क्या होता है, श्रुतिमूलक अनुमान होता है, है ना। किसी भी अनुमान का ये विषय नहीं। समझ में ना, क्या समझ में, क्योंकि व्याप्ति नहीं बनेगी ना। क्या नहीं बनेगी? अरे भाई, धूम और बन्नी को आपने देखा रसोई में, पाकशाला में देखा आपने, तब जाकर के पर्वत में धूम को देख करके बन्नी का अनुमान आप कर सकते हैं, हो गया ना। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान किसी से हुआ है क्या आपको? किससे हो? किसी से हुआ ही नहीं, तो क्या अनुमान कैसे करोगे? अनुमान आप नहीं कर सकते, इसलिए बोल दिया अलक्षणम कह दिया। स्वतंत्र अनुमान का विषय भी नहीं है और अचिंत्य, समझ में ना। कि बात क्या है कि श्रुति को आधार पर हम अनुमान करते हैं, एक हो गया स्वतंत्र अनुमान। जैसे भाई स्वर्गीय सुख का अनुमान करते हैं आप, क्यों अनुमान करेंगे? कि शास्त्र बोल रहा है कि अग्निहोत्रम जुहुया स्वर्ग कामह, श्रुति आपने पढ़ा तो क्या समझ में आया? अग्निहोत्र जाग करेंगे तो एक अपूर्व प्राप्त होता है, जिस अपूर्व के बल पर स्वर्ग में भोग होता है, हो गया ना। उस अपूर्व का भोग इस शरीर में नहीं हो सकता है, आप अनुमान कर सकते हैं। इस शरीर में नहीं हो सकता तो किस में होगा? स्वर्ग में हो जाएगा। ये आप शास्त्र के आधार पर अनुमान करते हैं, हो गया कि नहीं। तो जड़ पदार्थ का तो, स्वर्गीय सुख आदि का तो आप अनुमान कर सकते हैं शास्त्र के आधार पर, लेकिन आत्मा का अनुमान आप किसी भी आधार पर अनुमान आप कर ही नहीं सकते। क्यों? व्याप्ति कैसे बनेगी? व्याप्ति मतलब जहां जहां पर धूम है वहां वहां पर बननी है, ये होगी व्याप्ति। जहां पर हेतु है वहां पर साध्य है। आपको तो अनुमान बताने की यहां पर समय ही नहीं है, आगे चलते हैं। तो अचिंतम है ना, समझ नहीं ना अभी नहीं तो फिर न्याय का पाठ शुरू करना होगा। तो अचिंत्यम मतलब है? चल रहा है ना, तो फिर अच्छा ही है फिर। हाँ, तो न्याय के आचार्य भी चला रहे हूँ, देवानंद स्वामी जी, है ना। तो देखो, अचिंत्यम है प्रत्यक्ष के बल पर जो अनुमान करते हैं, प्रत्यक्ष पहले हुआ धूम बनने का, फिर धूम को देख करके बनने का अनुमान करते हैं, ऐसा आत्मा का होगा क्या? बोलो, आत्मा को आपने कभी देखी है? हाँ, वो देखने की चीज थोड़ी है तो देखेंगे उसको? नहीं देख सकते, है ना। इसलिए अचिंत्य कह दिया। तो जो मन का विषय नहीं हुआ वो वाणी का विषय होगा? बोलो, जो मन का विषय नहीं बना तो वाणी का विषय कैसे बनेगा? वाणी और मन में नित्य संबंध होता है, होगी नहीं, क्या समझ आया? वाणी और मन में नित्य संबंध, जो मन का विषय होगा वो वाणी का विषय भी होगा, और जो वाणी का विषय होगा वो मन का विषय भी होगा। समझ में ना। तो मन का विषय जो नहीं है, ऐसी आत्मा है, तो कहने से वो वाणी का विषय भी नहीं है। यद वाचा अनभ्युदितम ये न वाक अभ्युदते तदय ब्रह्म तम विद्धि नैदम यद इदम उपासते। बोलते ना कौन उपनिषद? केन उपनिषद? यन मनसा नाम मनुते, मन का विषय नहीं बोल दिया। तो फिर मन का विषय नहीं तो जानेंगे कैसे? कोई बोलेगा अरे जानने के तरीका है मनसा एवं अनुद्रष्टव्य कौन सा मन लेकिन संस्कृत मन कौन सा मन संस्कृत मन होना चाहिए है ना तब उसको आप जान सकते हैं संस्कृत मन जो है आपका मोक्ष का हेतु है और असंस्कृत मन बंधन का हेतु है समझ में कि नहीं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो हो ये बोल दिया क्यों ऐसा बोला बंधायच विषयासक्तम बंधायच विषयासक्तम और मोक्षाय निर्विषयम मन जब निर्विषक हो जाता है ना मन को जब समझा दिया आपने मन रूपी बच्चे को आपने सब समझा दिया कैसे समझाएंगे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध यही समझाना है जबरदस्ती मन को लगा नहीं सकते मन में ऐसी शक्ति है अभी जबरदस्ती कैसे लगाओगे एक उपाय है उस उपाय के द्वारा मन का आपने निग्रह कर दिया अब मन निग्रह वही होगा केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा आपका है ना अभ्यास भी करेंगे अभ्यास निष्ठा निष्ठा हम तो भाई मन को निग्रह करके ही रहेंगे है जन्मा कोटि लगी रगर हमारी तो माता जी ने बोली कि नहीं है बरहु तो संभो न तो रहो कुमारी ये देखो जब तक शिव जी से विवाह नहीं होता है तब तक कितने भी करोड़ जन्म मिल जावे कुमारी रहोगे देखो ऐसी निष्ठा यदि हो तब मन लगता है केवल वैराग्य से काम नहीं चलता है हो गया ना और बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे सात्विक भोजन करेंगे राजसिक तामसिक ना भी करें तब भी नहीं होता है रुचि यदि न हो निष्ठा यदि न हो तो वेदांत सुनते ही नींद आ जाएगी बात पक्की है कि नहीं केवल वैराग्य से काम नहीं होता है नींद में चले जाएगा कि नहीं चला जाएगा मन है ना इसलिए वैराग्य रूपी दीवार लगाओ विषय में नहीं जाएगा फिर ज्ञान रूपी अभ्यास रूपी दीवार को लगाओ तब निद्रा में नहीं जाएगा दो दीवार अपन लगा दिया दो दीवार लगा दिया फिर बीच वाला मार्ग कौन सा रहा ब्रह्म रहा ना और क्या है तीन प्रकार का मार्ग हो गया ना भाई ये हो गया बाह्य विषय विषय मान लो अनात्म विषय समझ लो अनात्म विषय रूपी एक मार्ग हो गया दूसरा मार्ग क्या है निद्रा दो मार्ग को अपने रोक दिया दीवार कंक्रीट दीवार लगा दिया ठोस दीवार लगा दिया तो बीच वाला मार्ग कौन सा है मन जहां से आया है जो मन का जो मूल है समझ में ना वो मार्ग हो गया कौन ब्रह्म मार्ग उसको ही मन विषय करेगा और जाएगा कहां बोलो और कहां जाएगा जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं ना तीन ही तो मार्ग है तीन ही तो मार्ग है ना भाई एक हो गया विषय दूसरा है आप दूसरी है आपकी निद्रा तीसरा कौन है ब्रह्म है तो उस वहीं पर जाएगा मन जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है है ना इसलिए उपाय ने तो निगिन्यात विक्षिप्तम काम हो गयो यहाँ पर गुरुपाद भगवान ने बोला है ना विषयों से हटाना मन को निग्रह करना है तो क्या चाहिए आपको उपाय उपाय मतलब तरकीब तरकीब यही है अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोध अभ्यास ने तो कौन थे वैराग्य च गृह यही उपाय है अभ्यास मतलब ज्ञान अभ्यास तो इसलिए संस्कृत मन हो जावे तो है ना ब्रह्म का ज्ञान होता है और संस्कृत मन से नहीं होगा अच्छा और अव्यपदेश्यम शब्द का विषय भी नहीं बता दिया शब्द का विषय नहीं मतलब है ना फिर सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इस शब्द से कैसे जानोगे मतलब अविधा वृत्ति से नहीं जान सकते लक्षण वृत्ति से तो भी जान सकते ये तात्पर्य यहां पर उसको लक्षित कर सकते हैं समझ में ना क्या उसको लक्षित कर सकते हैं और इदम रूप से नहीं जान सकते इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जितने वेदांत वाक्य है सब जो है लक्षणावृत्ति से ही बोध कराते हैं अविधा वृत्ति से क्योंकि संबंध नहीं बनेगा तो कैसे करोगे अब समझ में ना, शब्द का विषय कौन होता है? शब्द का विषय वही होता है जिसमें गुण है, क्रिया है, जाति है और संबंध है, उसको कहते हैं शब्द प्रवृत्ति निमित्त, है ना। गुण क्रिया जाति संबंधा शब्द प्रवृत्ति हेतवः, ये विद्वान लोग बोलते हैं। गुण क्रिया जाति संबंध जहां पर हो वहां पर शब्द की प्रवृत्ति होती है, हो गया ना। जैसे गुण है, है ना, शुक्लम वस्त्रम, शुक्ल हो गया गुण है कि नहीं, है ये शुक्लम वस्त्रम को समझ सुन करके आपको ज्ञान हो जाएगा सफेद वस्त्र का, हो गया ना। क्रिया है, क्रिया क्रिया कैसे, देवदत्त कौन है, देवदत्त पाचक, है ना, भोजन बनाने वाला, तो पचन क्रिया क्या है, ये प्रवृत्ति का निमित्त, इसलिए पाचक सुनकर के आपको ज्ञान हो जाएगा कि देवदत्त पाचक है, समझ में ना। और क्रिया हो गई ना, और क्या है, जाति, जाति देवदत्त कौन है, देवदत्त ब्राह्मण है, हाँ देवदत्त ब्राह्मण है, इसलिए आपको ज्ञान हो गया ब्राह्मणत्व, तो उसमें जाति है, ब्राह्मणत्व किसमें, आत्मा में है कि शरीर में, शरीर में, समझ में ना, क्या शरीर में है, लेकिन उसको तो आत्मा समझ रहा है ना, शरीर और चेतन को मिलाकर वो आत्मा समझ रहा है कि नहीं, भले ही आरोपित हो लेकिन ब्राह्मणत्व जाति रह गई, हो गया ना। आज संबंध क्या है, संबंध देवदत्त कौन है, देवदत्त मम पुत्र, मेरा पुत्र है, संबंध हो गया कि नहीं, है पिता पुत्रत्व संबंध हो गया, पितृ पुत्रत्व संबंध हो गया, इस प्रकार भी चारों का चारों है ही नहीं आत्मा में, ना कोई गुण है, ना क्रिया है, ना जाति है, ना संबंध है, बोलो कोई जाति है क्या, है आत्मा में कौन सी जाति होगी, कोई गोत्र है, है तो शिव जी को पूछा कि नहीं पंडित जी ने, कहां पर कर्णखल में, नहीं पूछा वेदी में, है आप तो जानते ही है, बताने के लिए समय नहीं है, हाँ, तो कह दिया अव्यपदेश्यम, मतलब शब्द का विषय नहीं है, है ना। अच्छा फिर आत्मा है, तुरीय आत्मा है, इसमें फिर क्या प्रमाण है, सभी प्रमाण का तो आपने काट दिया अभी, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है, है ना। फिर उसका ज्ञान कैसे होगा, प्रमाण के बिना तो प्रमेय होगा नहीं, प्रमेय किसके अधीन है, प्रमाण के अधीन है, तो होगा कैसे ज्ञान। कहते हैं कि देखो मैं तीनों अवस्था में हूं, है ना, तीनों अवस्था का मैं साक्षी हूं और साक्षी में एक हूं, यही प्रमाण है आत्मा के अस्तित्व में, आत्मा के अस्तित्व में दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, उसका ज्ञान ही प्रमाण है, समझ में आएगी, है ना। किसी ने पूछा भाई स्वामी रामतीर्थ जी से, है ना, भाई तुम्हारी आत्मा कैसी है, अद्वैत है, सचित आनंद है, इसमें क्या प्रमाण है, मैं ही प्रमाण हूं, देखो सबको काट दिया ना, सारे प्रमाण को खत्म कर दिया, मैं ही स्वयं प्रमाण हूं। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि भी वो किसी से सिद्ध ही नहीं ना, आत्मा किससे सिद्ध है, वो स्वतः सिद्ध है, हाँ लेकिन उसकी अनुभूति न होने में जो प्रतिबंधक है ना अनात्मा, उसको ही मिटाता शास्त्र है, आत्मा को प्रकाशित कोई करता नहीं है, हो गया ना। हाँ प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयो प्रमितिस्त था, है यत सान्निध्यात् प्रसिद्धंति तसिद्धो किम अपेक्षते, उसी से सब सिद्ध होते हैं, कौन कौन, प्रमाता है, प्रमाण है, चक्षुरादि प्रमाण, आत्मा परे सिद्ध है कि चक्षु पहले सिद्ध है, चक्षु कैसे सिद्ध करेगी, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयो घटपट आदि सब प्रमेय है, और उसका ज्ञान भी घट ज्ञान पट ज्ञान भी क्या है, प्रकाशित है, किसे, घट ज्ञान बोलने से घटाकार वृत्त्यात्मक ज्ञान, वो भी किससे प्रकाशित है, साक्षी से, आत्मा से, हो गया ना, वो उसी से सब सारा सिद्ध हो रहा है, फिर उसको कौन सिद्ध करेगा, है तमय भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, ये बोल दिया देखो श्रुति ने, है ना, इसलिए क्या है, वो स्वतः सिद्ध है, उसका जो ज्ञान हो रहा है कि मैं हूं, तीनों अवस्था में एक हूं, यही प्रमाण है और दूसरा कोई प्रमाण नहीं, इसको यहां पर बोलते हैं देखो श्रुति, एकात्मा प्रत्यय सारम एकात्मा प्रत्यय, एक आत्मा प्रत्यय, एकात्म मतलब क्या, जागृत आदि अवस्थासु एक एव आत्मा प्रत्यय यस्य, मैं एक आत्मा ही हूँ, तीनों अवस्था में साक्षी एक हूँ। ये जो आपको ज्ञान हो रहा है, किससे ज्ञान, स्वतः ज्ञान हो रहा है, बस चेतन रूप है ये, किसी से ज्ञान थोड़ी हो रहा है आपको, आप हो हाँ, ऐसा कोई बताता है क्या? अरे भाई, बच्चा पैदा होता है कि माता बताती है हाँ, तुम हो हाँ, बताती है क्या हाँ, ये तुम्हारा पिता है, ये माता है, ये डैडी है, मम्मी है, ये बताना पड़ता है, अनात्मा को बताया जाता है, सही है कि नहीं? किसको बताते हैं लोग? अनात्मा को बताते हैं, आत्मा को नहीं बताते हैं। गड़बड़ी किसमें हो रही है? गड़बड़ी किसमें हो रही है? आप घटा हो जीवन में हैं, गलती हो जाती है, लेकिन कहां पर गलती हो रही है हम विचार नहीं कर पाते हैं, समझ में कि नहीं? तो आत्मा के अस्तित्व के विषय में उपदेश नहीं किया जाता है। हाँ, ये उपदेश किया जाएगा हैं, जो विशेष अनुभूति नहीं हो पा रही है, सामान्यतया तो अनुभूति हो रही है कि मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं हाँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये बता जाता है, हो गया? ये भी ये ज्ञान कराने के लिए नहीं, मैं आनंद हूं ऐसा ज्ञान कराने के लिए नहीं, मैं आनंद हूं ऐसी अनुभूति न होने में जो प्रतिबंधक है अनात्मा, उसको मिटाने के लिए उपदेश है, आत्मा का अनुभव के लिए उपदेश नहीं है। जैसे चंदन की सुगंध को प्रकट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं है ना, क्या करते हैं आप, रगड़ते हैं जल में धो करके, जल में जो धो करके जो रगड़ते हैं वो किसके लिए है, प्रतिबंधक जो कीचड़ है उसको हटाने के लिए हैं, वो चंदन की सुगंधि के लिए वो तो है ही, चंदन की सुगंधि तो है ही स्वाभाविक है, वो आगंतुक थोड़ी है, वो आगंतुक क्या है, दुर्गंध, आगंतुक क्या है, दुर्गंध, आया था इसलिए गया, जो कभी आया ही नहीं तो जाएगा कैसे, सुगंध कहीं कभी आई क्या तो जाएगी क्यों, समझ में कि नहीं? इसी प्रकार यहाँ पर भी है, ये सब रगड़ना ही है, ये सब क्या है, ये श्रवण मनन निध्यासन ये क्या है, रगड़ना ही है, अनात्मा जो है ना, आत्मा में जो अनात्मा आ गई है उसको हटाने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति है ना, स्वाभाविक धर्म को प्रकट करने के लिए अनात्मा की निवृत्ति आवश्यक है। तो देखो कह दिया एकात्मा प्रत्यय सारम, मैं सर्वदा हूं, तीनों अवस्था का साक्षी हूं और एक हूं, यही जो प्रत्यय मतलब ज्ञान है, यही हो गया यहां पर प्रमाण, सार का अर्थ प्रमाण, दूसरा और कोई प्रमाण यहां पर नहीं, स्वतः प्रमाण है ये। अच्छा, तो ऐसा स्वरूप हो गया, इसलिए वो सभी का साक्षी है और सभी का अधिष्ठान है, इसलिए अध्यस्थ का संबंध तो अधिष्ठान के साथ वास्तविक बनता ही नहीं है, बोलो है ना, चलचित्र के पर्दे में अग्नि धू धू कर जलती है, लेकिन अग्नि का कोई संबंध है क्या, संबंध बन ही नहीं सकता है, हो गया नहीं? सारा का सारा प्रपंच उसमें कल्पित है, हो गया ना, प्रपंच का संबंध तो बन ही नहीं, वही पर्दा ही दिखता है, पुलिस के रूप से भी दिखता है और चोर के रूप से भी दिखता है, हो गया कि नहीं? और वही शुद्ध ब्रह्म जो तुरीय चेतन ईश्वर के रूप से भी दिखता है और जीव के रूप से भी दिखता है, और यहाँ पर विश्व के रूप से भी है, तेजस के रूप से भी है, और है ना, वही तुरीय चेतन, तुरीय चेतन ने कोई भिन्न, अयम आत्मा ब्रह्म, देखो बोल दिया ना, यही आत्मा, यही इसका स्वरूप ब्रह्म ही है, दूसरा कोई ब्रह्म आसमान पर है ऐसा नहीं। तो कह दिया प्रपंच उपशमा, प्रपंच वास्तविक है ही नहीं, उसमें दिखता है, सतो ही माया जन्म, ये सत ब्रह्म ही माया के रूप से वो दिखता है ना। अच्छा, इसलिए उसका स्वरूप क्या होगा, शांत कह दिया, आत्मा का स्वरूप कैसा है, कुटस्थ है, समझ में कि नहीं? जीव का स्वरूप क्या है, ना उपाधि है ना उपहित है, उपाधि उपहित का मूल जो कुटस्थ है, जीव कहने से तीन आ जाते कि नहीं, जीव किसका नाम है? जीव किसका नाम है? जीव जो है तीनों का नाम, तीनों को मिलकर के। उपाधि अंतकरण कहो, अविद्या कहो, है ना। उपाधि में चिरावास, उपाधि आपका अंतकरण, आपकी अविद्या स्वच्छ होने से उसमें आभास पड़ गया। अरे चिदाभास कब पड़ेगा? कोई चित हो तब चिदाभास होगा, समझ में ना। चित यदि न हो तो चिदाभास, तो चित जो हो गया कुटस्थ, तीनों हो गया ना। चित हो गया बिंब कुटस्थ, उसका आभास अंतकरण, और अंतकरण है तब चिदाभास पड़ेगा। तो तीनों को मिलाकर क्या है? जीव है, हो गया ना। इसलिए जीव का मूल कौन है? कुटस्थ होता है। इसी प्रकार ईश्वर में भी ऐसा है, ईश्वर में भी तीन आ जाएगा। माया है, माया में प्रतिबिंब चेतन है, और प्रतिबिंब का मूल हो गया मूल, यो कौन? आपका जो कुटस्थ है। लेकिन फर्क इतना है कि ईश्वर में बिंब की प्रधानता है और जीव में प्रतिबिंब की प्रधानता है। बात पढ़ाई ना। तो बिंब की प्रधानता होने से ईश्वर माया के अधीन नहीं होगा, और हम लोग क्या है? प्रतिबिंब की अधीनता, प्रतिबिंब की प्रधानता होने से जीव अधीन हो जाता है माया के अधीन। ये अंतर इतना है, लेकिन मूल तो कूटस्थ है। ईश्वर का ही मूल कूटस्थ है और जीव का भी मूल कूटस्थ। मूल यदि ना हो तो अयम आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता। ये मूल यदि ब्रह्म ना हो, है ना, फिर ब्रह्म होगा कैसे? फिर मूल वही है, इसलिए मूल को प्राप्त करता है। मूल है तब ना प्राप्त करेगा जी, है ना। लेकिन भ्रांति कारण ये बिछुड़ गया है। भ्रांति के कारण अनादिकालीन अविद्या जनित जो अध्यास है, उस अध्यास के कारण मूल का विस्मरण हो गया। शास्त्र केवल स्मरण कराता है, ठीक है ना। इसलिए हो गया शांत, मतलब कूटस्थ है, कूटस्थ है ना। और उसका कूटस्थ हो गया तो जड़ मान लो, ऐसा नहीं, चेतन भी है और आनंद भी है। इसलिए बोल दिया शिवम, शिवम शिव मतलब आनंद रूप है, आनंद रूप भी है और आनंद देने वाला भी है, समझ में ना। तो आनंद देता किसको? आनंद देता है साधक को, देता है। देता किसको? देता कुछ नहीं है, दूसरा कोई है ही ना, देगा क्या, है ना। देने वाला भी क्या है? कल्पित है। आपकी दृष्टि से ईश्वर है, किसकी दृष्टि से? हाँ, अत्यंत तो मूर्ख के दृष्टि से नहीं, जो मानता है कि ईश्वर है उनके दृष्टि से ईश्वर है कि नहीं, है ना। इसलिए कहते हैं कि साधक के दृष्टि से वो आनंद देता है, और ज्ञानी के दृष्टि से आनंद देता भी नहीं, इसलिए आनंद रूप हो गया, समझ में ना। मूल में, स्वरूप में वो आनंद रूप है, और उपाधि को लेकर के जीव की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से आनंद देता भी है, समझ में ना, ईश्वर होकर के। इसलिए कह दिया शिवम, और क्या हो गया? द्वैत है ही नहीं। नाम रूप सब कैसे है? अविद्या से कल्पित है। इसलिए मूल कौन हो गया? अद्वैतम, अद्वैत हो गया, अद्वैत हो गया ना, अद्वैत है ना। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत मतलब अद्वैत, कोई भी वहां पर उपाधि है ही नहीं, ना सजातीय है, ना विजातीय है, ना स्वगत है। इसलिए वो कहेगा अद्वैत, ऐसा चतुर्थम, चौथा मतलब ये चौथा कोई चेतन है नहीं, वही तूर्य चेतन ही विश्व प्राज्ञ तेजस के रूप से दिखता है ना। इसलिए शुद्ध हो गया, मन्यन्ते स आत्मा, ऐसा ये तूर्य चेतन है। तूर्य चेतन इसको कहते हैं कौन? तत्व ज्ञानी, है ना। इसलिए उसको प्राप्त करो, सविज्ञेय उसको जानना चाहिए, आत्मा बारे द्रष्टव्य उसका साक्षात्कार करना चाहिए, केवल सुनना नहीं चाहिए, है ना, सुनने में सीमित नहीं होना चाहिए। ये शब्द ज्ञान को अपरोक्ष अनुभूति में पर्यवसित करना चाहिए, स्वीकृत ज्ञान होना चाहिए। एक शब्द ज्ञान होता है और एक स्वीकृत ज्ञान होता है, समझ में ना। वही जो स्वीकृत ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक, शब्द ज्ञान नहीं, समझ में। इसलिए यहाँ पर श्रुति ने यहाँ पर इंगित किया विज्ञेय, विशेषण ज्ञेय, मतलब स्वीकृत रूप से अपरोक्ष साक्षात्कार करना चाहिए, अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए, वही अपरोक्ष अनुभूति, वो भी कब अपरोक्ष अनुभूति होगी? आपको जब बल प्राप्त हो, समझ में ना? क्या ईश्वरीय बल प्राप्त करके जाते हैं, आपने यदि अपरोक्ष ज्ञान किया तब जाकर के अज्ञान का निवर्तक है, नहीं तो माया की शक्ति को आप अपनी शक्ति से कैसे काटोगे? है माया की शक्ति को हम अपनी शक्ति से, हमको ज्ञान हो जाएगा अपने बल पर काट देंगे, कैसे काटोगे? नहीं काट सकते आप। इसलिए आगे ये बल को प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए आगे उपासना है 5 मंत्र। 7 मंत्र में ज्ञान का विचार हुआ, और ज्ञान को पचाने के लिए, शाब्द ज्ञान को अपरोक्ष अनुभूति में पर्यवेक्षित करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए आगे उपासना है, 5 मंत्र है, उसका विचार तो नहीं हो पाएगा, कल उपासना है वो। तो इस प्रकार से परमात्मा और अपने गुरुजनों की कृपा से और यहां पर उपस्थित इस कार्यक्रम के संचालक श्रद्धेय गिरीश भाई जी, श्रद्धेय मधुसूदन जी और अन्य भगवत स्वरूप भक्त और भगवती स्वरूपा माता वृंद, आपके सहयोग से यह मांडुक्य उपनिषद का विचार हो पाया, इसलिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि एक से ये प्रक्रिया चलती नहीं है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम, श्रोता भी होना चाहिए और वक्ता भी होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस संस्था के संस्थापक ब्रह्मलीन पूजनीय महाराज जी, उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से ये संस्था चलती रहे, जिससे लोगों का उपकार हो सके, जिससे यह दुर्लभ मनुष्य जन्म सार्थक हो सके। ऐसी अभिलाषा, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपनी वाक् पुष्पांजलि को परमात्मा के चरणों में, इस संस्थापक के पूजनीय महाराज श्री के चरणों में अर्पण करते हुए ओम शांति शांति शांति।
नारायण 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 नारायण। आइए हम सब स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। दुर्लभ ज्ञान की बातें स्वामी जी के मुख से हमने श्रवण की। हम सभी साधक हैं, हम यहां साधना करने के लिए आते हैं, हमारा उद्देश्य प्राप्तव्य परमात्मा है, आत्मस्वरूप की अनुभूति है, परमात्मा की अनुभूति है। यहां संत आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि हम प्रेमपुरी से जुड़े हुए हैं, और ऐसे महात्मा ऐसे महापुरुष यहां आकर हमारे कल्याण के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए दुर्लभ बातें जो जन्म जन्मांतरों तक हम अध्ययन करते रहे हमें प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे ज्ञान की बातें स्वामी जी हमें सुनाते हैं। हमारा परम सौभाग्य है, हमारा कर्तव्य यही है कि जो हम सुनते हैं उसको अपने आचरण में लाएं। हमारा उद्देश्य अपना कल्याण करना है, तभी हम यहां पर आते हैं, नहीं तो आने का कोई मतलब नहीं है। हम सब ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि जो हम सुनते हैं उसको पचा सकें, उसको अपने आचरण में ला सकें। जय श्री कृष्ण।
पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन। महाराज जी आपके चरणों में एक ही निवेदन है कि आपसे हम आभार न मानते हुए आप हमें देव तो यही दो कि हमारे पर जो आशीर्वाद की अंगी वर्षा आप जैसे संतों के द्वारा या प्रेमपुरी सत्संग मंडल सत्संग जो भी सत्संगी आ रहे हैं, स्वाध्यायी आ रहे हैं और सायं गीता चिंतनमाला के दरमियान या अन्य कार्यक्रमों में संत पधारते हैं, तभी संतों के द्वारा यह अमी वर्षा होती रहे हमेशा, वही हम ईश्वर से भी मांगते हैं। फिर से आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी के पुण्यश्री चरणों में वंदन करते हुए, पूज्य महाराज जी अगले वर्ष यही सितंबर 16 से पधारेंगे और प्रातः हमें यह प्रवचन का पुण्य लाभ देंगे। हरिओम।